1933 और हमारा फिल्म व्यवसाय। 1933 का फिल्म व्यवसाय संबंधी एक आलोचनात्मक निबंध, लेखक श्री पीतांबर झा। सिनेमा कला का एक उज्जवल आदर्श होते हुए भी इन दिनों हमारे यहां व्यवसाय का एक मुख्य अंग समझा जाता है। खासकर बंबई के प्रांतों में तो यह व्यवसाय का सर्वश्रेष्ठ साधन ही बन गया है। एक जमाना था जब यह पहले पहल पाश्चात्य देशों में से घसीटकर यहां लाया गया था। तब इसमें पाश्चात्य देशों के रस्म रिवाजों की पुट थी और जानबूझकर भी हम उसका अनुकरण करना अपना गौरव समझते थे। धीरे धीरे मूक फिल्मों में हमारे कतिपय कलाकारों ने हमारी जात, समाज और देश के रस्म रिवाज को चित्रमय रूप दे देकर हमारे सम्मुख लाना शुरू किया। फिर बोलपटों का आविष्कार हुआ। हमारी भारतीय कंपनियों ने भी आंखें मूंद कर शराबी की तरह इसकी ओर पांव बढ़ाया। अंत में 1933 के आते आते हमारे यहां बोलपटों की धूम मच गई। नित्य नए चित्रपट हमारी आंखों से गुजरने लगे। अपने इस लेख को मैंने 1933 की फिल्म व्यवसाय संबंधी बातों का एक आलोचनात्मक रूप दे दिया है। मैंने जो कुछ भी लिखा है निष्पक्ष रूप से, विश्वास है पाठकगण मेरी बातों पर गंभीर रूप से विचार करेंगे। राजरानी, सैरंध्री, भोला शिकार, सौभाग्य सुंदरी तथा पूर्ण भक्त आदि फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न होती हुई भी दर्शकों के मनोविनोद की अत्यंत मौलिक वस्तुएं हैं। पूर्ण भक्त ने हमारे सामाजिक आदर्श और संस्कृति का कलामय रूप चित्रित कर संसार के सामने रखा है और राजरानी मीरा ने, जो कि पौराणिक बोलपटों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, दिखा दिया कि हमारी भारतीय फिल्म संस्थाओं से भी कला का कहां तक उत्कर्ष हो सकता है। इतना होते हुए भी जनता ने इसका समुचित आदर नहीं किया। संभवतः इसका कारण कथानक का पौराणिक आधार ही हो। मेरे लिखने का यह तात्पर्य है कि पौराणिक फिल्मों का कथानक यदि स्वाभाविक तथा रुचिकर रहा तो सहज ही में जनता उसकी ओर झुक जाती है। मीरा का कथानक रुचिकर होते हुए भी कहीं कहीं अस्वाभाविक सा हो गया है और यही कारण है कि यह अन्य पौराणिक चित्रपटों के मुकाबले में नहीं ठहर सकता। पूर्ण भक्त भी सन 33 की इन्हीं गिनी फिल्मों में है। कथानक पौराणिक होते हुए भी वह अपनी विशेषता रखता है। यह अपनी रोमांचकर यानी रोमांटिक क्वालिटीज विशेषताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहा जा सकता है। इसके कथानक की पौराणिकता हमारी सामाजिक सीमाओं के भीतर है और इसीलिए यह विशेष रोचक और प्रसिद्ध हो गया है। इस वर्ष बहुत सी फिल्म कंपनियों ने अपने व्यावसायिक धंधों का ख्याल छोड़ भारतीय संस्कृति, सभ्यता और कला को अपनाने की चेष्टा की है और बहुत अंशों में वे सफल भी हुई हैं। सरस्वती सिनेटोन का आवारा शाहजादा, प्रभात का अग्निकंकण, इंपीरियल की सुलोचना, रणजीत की विश्वमोहिनी, न्यू थिएटर्स के पूर्ण भक्त, राजरानी मीरा, यहूदी की लड़की तथा चंडीदास और ईस्ट इंडिया की सीता हमारी ऐसी फिल्मों में हैं जहां उनके व्यावसायिक धंधे की बू बहुत कम है। इनमें चंडीदास और जलती निशानी यानी अग्नि कंकण हमारे ऐसे चित्रपटों में से हैं जो किसी भी दृष्टिकोण से अभिनय, मनोरंजन या कला संबंधी बातों को लेकर ही विदेशी फिल्मों से टक्कर ले सकती हैं। न तो इनके कथानक में पौराणिकता की पुट है और न जादू के आश्चर्य भरे कारनामे ही, बल्कि इनमें हार्दिक भावनाओं का संघर्ष, मनोवैज्ञानिक तत्वों का गंभीर विश्लेषण इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रदर्शित किया गया है कि वैसी कुछ बात बहुत सी विदेशी फिल्मों में भी हमें देखने को नहीं मिलती। आरंभ से अंत तक कथानक में सुंदरता है, घटनाओं और भावों का सुंदर तांता बंधा हुआ है। सारांश में यह चित्रपट गति, काव्य, कला और आकर्षण के अपूर्व सम्मिश्रण से बने हैं। अवारा शहजादा को भी मैं इस वर्ष की विशेष फिल्मों में गिनता हूं। इसका वस्तु विन्यास अपने ढंग का एक ही है। मोदक का कलापूर्ण अभिनय इतना रोचक और प्रभावोत्पादक हुआ है कि सहज ही में जैकी कूगन की याद हो आती है। सच में ऐसे निर्दोष अभिनय के लिए हम उसके आभारी हैं। इनकी धुन में हम सागरकृत जरीना को नहीं भुला सकते। मैं मानता हूं कि नग्नवाद की नग्नता के कारण यह फिल्म आवश्यकता से अधिक नंगी हो उठी है, किंतु इसका वास्तविक मूल्य उतना नंगा नहीं रहा है। हॉलीवुड के एज़रा मीर ने बड़ी सतर्कता और कलापूर्ण विधि से इसका डायरेक्शन किया है। दो प्रेमियों का विचित्र जीवन भावनाओं के उत्थान पतन के साथ किस प्रकार इस छोर से उस छोर तक चला जाता है, इसका करुण इतिहास देखते ही पैरामाउंट की लव परेड की याद हो आती है। फर्क इतना ही है कि एक ट्रेजेडी यानी दुखांत है और दूसरा कॉमेडी यानी सुखांत। एक के नायक नायिका युवराज और राजकुमारी हैं तथा दूसरे के एक नर्तकी और एक निर्धन अंधे बाप का एक आवारा पुत्र। 1933 के इंपीरियल के कतिपय चित्रपट भी हमारी स्थायी वस्तुएं हैं। सौभाग्य सुंदरी, सुलोचना, दुरंगी दुनिया तथा भारती माता उसके चार दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। सौभाग्य सुंदरी हमें भारतीय स्त्रीत्व के विभूति भरे अरमान के साथ गृह कलह और भ्रातृ प्रेम का उज्ज्वल आदर्श सिखलाती है। सुलोचना हमें रुलाती है, हंसाती है, दांव पेच सिखलाती है, साथ ही हमारे धर्म प्राण पंडे पुजारियों के पाखंड तथा ढोंग का पोल भी खोल देती है। भारती माता से हम अपनी माताओं के सुकुमार हृदय की महत्ता का कुछ कुछ अनुमान कर सकते हैं। जब जिल्लू अपने वेश्यागामी पुत्र से तिरस्कृत कर दी जाने पर भी उसके नवजात शिशु को उस वर्षा की रात में देखने को जाती है और अपनी पुत्र वधू द्वारा डायन आदि कहलाकर अच्छा बेटा मैं आती हूं कहती लौटती है, तब उसकी आंतरिक वेदनाओं की थाह पाने के लिए हमें अपनी माताओं का सुकुमार हृदय टटोलना पड़ता है। शायद ही अन्य किसी देश की देवियों में इतनी सहन शक्ति होगी। रणजीत भी 1933 को अपनाए बिना बाज ना आया। इसकी मिस 1933, भोला शिकार तथा विश्व मोहिनी आदि फिल्में सन 33 की श्रेष्ठ कृति हैं। इसे गौहर जैसी सफल अभिनेत्री का सहयोग प्राप्त है। संदेह नहीं, मिस 33 की फिल्मों में गौहर की अभिनय कला कहीं कहीं हद दर्जे तक पहुंच गई है। जेल में जब बिली मोरिया उससे मिलने जाता है, तब उसका यह कहना, किसी किसी का मुंह हो काला, हंसी खुशी का बोल वाला, कितना उच्च कलापूर्ण और हृदयग्राही था। इतना होते हुए भी जब हम कलकतिया कंपनियों की 1933 की फिल्में देखते हैं तो सहसा उनकी याद भुला देनी पड़ती है। अपनी छोटी सी उम्र में ही यहां की कंपनियों ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो बंबई की कंपनियों के लिए बिल्कुल बेजोड़ निकली। पूरण भक्त, राजरानी मीरा, यहूदी की लड़की, चंडीदास, सीता, रामायण, सुबह का सितारा आदि ऐसी अनेक फिल्में हैं जो सभी बंबई की अच्छी से अच्छी फिल्मों से बढ़ चढ़ कर हैं। मेरे लिखने का यह मतलब नहीं कि बंबई की फिल्में बिल्कुल निकम्मी ही होती हैं। बंबई की फिल्मों में भी हमें कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है, पर ऐसी फिल्मों की संख्या कलकत्ता के सामने नगण्य है। सिर्फ एक ही वर्ष में कलकत्ते ने सिनेमा संसार में एक तहलका मचा दिया। बंबई का सिर नीचा करने के लिए अब उसने कुछ भी उठा न रखा। हमारी आंखों से अब जितने श्रेष्ठ कलापूर्ण चित्र गुजरते हैं सभी कलकत्ते वालों की रचनाएं हैं। इसके जहां तक मैं समझता हूं दो तीन प्रधान कारण हैं। एक, प्रारंभ से ही बंबई की कंपनियां व्यवसाय के ढर्रे पर स्वदेशी फिल्में बनाती आ रही हैं। देश भर में पहले पहल यहीं से फिल्मों का प्रचार होता था। इस कारण उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फिल्म चाहे किसी भी दर्जे की हो उसकी अवश्य खपत होगी। बात भी वैसी ही कुछ थी। दूसरा था ही कौन जो उस समय इनके मैदान में आता। इस प्रकार इन्होंने खूब पैसा कमाया। महज मामूली फिल्मों से भी इन्हें गाढ़ी रकम मिल जाती थी, इसलिए कम लागत से भी फिल्में बना बनाकर रुपए बटोरने की इन्हें आदत पड़ गई। कुछ दिन बाद कलकत्ता मैदान में उतरा, किंतु हिंदी नहीं, बंगला फिल्मों के साथ। इसलिए उसकी फिल्मों की यूनिवर्सल मांग नहीं हुई और इस प्रकार बंबई वालों को इनसे कोई भी क्षति नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब इंपीरियल ने प्रथम बोलपट आलम आरा बनाया तो उसकी देखा देखी मैडन ने भी अपने दो तीन स्टेज खेलों को टॉकी फिल्मों का रूप दे दिया। आरसीए मशीन की रिकॉर्डिंग रहने की वजह से इसकी खूब चल निकली। कुछ दिन बाद हमारे बंगाली कलाविदों का ध्यान हिंदी बोलपटों की ओर आकृष्ट हुआ और इन्होंने हिंदी फिल्में बनानी शुरू की। इस कार्य में अगुआ वहां का न्यू थिएटर्स रहा। आज तक इसने जितनी भी फिल्में बनाई वे बिल्कुल ठोस और शानदार निकली, या यूं कहिए कि एकदम बेजोड़ रहीं। हाँ, बंबई और पूना की कंपनियों ने भी श्री चौधरी तथा शांताराम जैसे कुशल और मेधावी कलाविद की सहायता से दो एक अच्छी फिल्में बनाई, किंतु कलकत्ता के आगे वे भी फीकी रहीं। दो, एक और विशेष कारण जिसकी बदौलत बंबई की फिल्में कलकत्ते की फिल्मों से टक्कर नहीं ले सकती, यह है कि बंबई की कंपनियां पाश्चात्य सभ्यता और शिष्टाचार की ओर विशेष रूप से झुकी जान पड़ती हैं। चाहे कितना ही उत्कृष्ट चित्रपट क्यों ना हो, उसमें नग्नवाद की कुछ न कुछ झलक आ ही जाती है। एक तो उन्होंने लेखकों की कहानी को स्वतंत्र रूप देने की आजादी नहीं दी है, दूसरे उन्हें ऐसे कथानक के लिए बाध्य होना पड़ता है जिसमें अश्लीलता का नंगा रूप हो। यह दोष बंबई की बड़ी से बड़ी फिल्म कंप